ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ सुखात्महे नमः नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियाणं नमो वच्छायानं नमो लोये सौवसाहुणं जेनिन कसाय पाहुर मणेयणय मुज्जलं अनन्तथं गाहि विवरियं तं गुणहर वंदे। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधोला टीका है जो कषाय पाउर तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। द्वितीय पुस्तक जो प्रकृति विभक्ति, उसमें उत्तर प्रकृति विभक्ति की बात हम देख रहे हैं और उसमें भी सन्निकर्ष की बात चल रही है। यहाँ हम पृष्ठ संख्या 130 से सन्निकर्ष शुरू हुआ, आज हम 134 पर पढ़ेंगे, परंतु 130 से हम जरा देखते हैं सन्निकर्ष क्या होता है। नीचे का पैराग्राफ 130 पृष्ठ पर नीचे का पैराग्राफ, तो उसमें भी ओ और आदेश ऐसे दो प्रकार से बताएंगे, यानी सामान्य से और विशेष से। तो वहां जिसकी एक की सत्ता है उसके अन्य कौन कौन सी सत्ता उसके साथ होगी, उसको कहेंगे सन्निकर्ष। मिथ्या तो प्रकृति है तो उसके साथ अन्य कौन कौन सी प्रकृतियां होगी, तो यहाँ हम पढ़ेंगे यहाँ से। ओग की अपेक्षा जो जीव मिथ्यात्व की विभक्ति वाला है वह सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क की विभक्ति वाला कदाचित है और कदाचित नहीं है। क्या कहना चाहते हैं, जो मिथ्यात्व तो प्रकृति की सत्ता वाला जीव है उसके अनंतानुबंधी की सत्ता नहीं भी हो सकती। ऐसा कब हो सकता है कि मिथ्यात्व तो है और अनंतानुबंधी नहीं है? दूसरे में वहां तो अनंतानुबंधी, यह तो सत्ता की बात चल रही है। दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व की भी सत्ता है, अनंतानुबंधी की भी है। हमें ऐसा जीव चाहिए जिसके मिथ्यात्व प्रकृति की तो सत्ता है, अनंत अनुबंधी की नहीं है। जिसने भी संयोजना की है वो भी संयोजना बिना क्षपणा के भी हो सकती है और क्षपणा के भी शुरू में तो भी संयोजना करते हैं। अब अनंत अनुबंधी की सत्ता वाला वो तो अनादि मिथ्या दृष्टि से लेकर जिसने भी संयोजना की नहीं है, ऐसे सम्यक दृष्टि के भी सत्ता है। कल में जैसे प्रथम उपशम सम्यक वाला है, वेदक है, परंतु जिसने भी संयोजना की नहीं है, ऐसा सम्यक दृष्टि या अन्य सभी मिथ्या दृष्टि अनंत अनुबंधी की सत्ता वाले है। यहाँ प्रकृतियों की बात चल रही है, ऊपर के गुणस्थानों में जाने पर भी प्रकृतियों की तो सत्ता रहती है, उसकी बात चल रही है। हाँ हाँ, सम्यक से गिन के आए तो हो सकता है, परंतु जब सम्यक दृष्टि है तब भी उसकी सत्ता तो पड़ी है, परंतु सम्यक तो होने के बाद किसी ने अनुदान करने के लिए संयोजना की है, तो संयोजना करने के पश्चात जब तक सम्यक को चालू है तब तक तो उसका अनंतानुबंधी है नहीं। जब मिथ्यात्व में आता है तो दोबारा बंधन शुरू हो जाता है उसी, हाँ, जिस समय आया उसी समय में बंद शुरू हुआ, उदय होने के लिए आवली काल लगेगा, बंद शुरू हो जाए। बंधावली के एक आवली के पश्चात, बंधावली जिसको कहते हैं, बंद होने के एक आवली बाद उसका उदय शुरू हुआ। कौन सी जीव की बात की, जिसने भी संयोजना की है और जो मिथ्यात्व में जाता है, अनंत अनुबंधी तो सत्ता में थी नहीं, अभी नया बंध करेगा तो नया बंध करेगा तो उसका आबाधा भी होगा, आबाधा काल बड़ा भी होगा तो भी वहां उदीर्णा के द्वारा फिर वंदावली के पश्चात उपदेश
पहला समय
हाँ जो जिस समय उसने बंध शुरू किया उस समय से उसकी सत्ता चालू हो गया। परंतु जो अन्य जो है अभी ये जो दूसरी अनंत अनुबंधी की तो बात देखी हमने, मिथ्यात्व की विभक्ति वाला है परंतु सम्यक प्रकृति नहीं है, ऐसा कौन सा जीव होगा? अनादि भी होगा क्योंकि उसके सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति दोनों नहीं है, या जिसने उद्वेलना है, उल्टा लेना ना, शायित्व वाला जो है क्षपक करने वाला क्षपणा करने वाला उसके तो पहले मिथ्यात्व का अभाव होगा और बाद में अन्य दो का, इसलिए यहाँ मिथ्यात्व तो है, मिथ्यात्व प्रकृति है परंतु सम्यक प्रकृति नहीं है, सम्यक मिथ्यात्व नहीं है, या तो अनादि का है जिसने अभी वो टुकड़े हुए ही नहीं है, या जिसने पहले तो किए थे और अभी उद्वेलना हो गए, परंतु अन्य जितने जो प्रकृतियां हैं तो जहां मिथ्यात्व है वहां अन्य जो 12 कषाय और 9 कषाय होते ही है। इसका अर्थ मिथ्या दृष्टि का यानी जब तक सपना नहीं होती मिथ्यात्व का क्षय नहीं होता तब तक ऊपर चढ़ के अन्य का क्षय नहीं हो सकता, तभी तो क्षपक श्रेणी चढ़ेगा। ये बात ख्याल में आई? अब वहां लेते कि जिसके सम्यक प्रकृति की सत्ता है और मिथ्यात्व तो की सत्ता नहीं है, ऐसा कोई हो सकता है? सम्यक प्रकृति की है परंतु मिथ्यात्व तो की नहीं है, जो क्षय क्षय करने जा रहा है ऐसा, मिथ्यात्व तो का क्षय कर चुका है और सम्यक प्रकृति का क्षय नहीं हुआ है ऐसा, या अकेले कृतकृत्य नहीं कहना, कृतकृत्य एकमात्र अंतर्मूर्त रहता है तभी उसको कृतकृत्य कहते हैं, क्योंकि जब संक्रमण पूरा होता है तो अनेक कृतकृत्य, अकेले कृतकृत्य का नाम नहीं लेने से क्या, ऐसा लेना जो क्षपणा कर रहा है ऐसा, मिथ्यात्व की क्षपणा पूरी हुई है ऐसा जो, समय मिथ्यात्व के बारे में कहना है तो भी ऐसा है कि समय मिथ्यात्व का संक्रमण पूरा हो गया और समय प्रकृति सत्ता बहुत है उसमें वो कांड घात आदि होते हैं, परंतु कृतकृत्य में तो एक अंतर्मूर्त रह जाता है, जब कांड घात होना बंद हो जाता है कांड घात पूरे हो जाते हैं तो अकेले कृतकृत्य वेदक की बात नहीं करना। और अनंतानुबंधी की चतुष्क की विभक्ति वाला भी कदाचित है और कदाचित नहीं है, सम्यक प्रकृति की सत्ता है और अनंतानुबंधी की भी है तो हम कहेंगे ना कोई भी औषमिक सम्यक दृष्टि हो सकता है या वेदक सम्यक दृष्टि हो सकता है, और नहीं है वाला जिसने विषय योजना की कृतकृत्य की लेने की जरूरत नहीं है, वेदक सम्यक दृष्टि है और विषय योजना की या उपशम भी है उसने जिसने विषय योजना की, यानी अनंतानुबंधी की नहीं परंतु सम्यक प्रकृति की है ऐसा चीज, ये तो सामान्य की बात है। अब बाद में हम जो विस्तार से देख रहे थे अनंतानुबंधी क्रोध की है, यानी अनंतानुबंधी की विभक्ति तो है तो सम्यक प्रकृति की है भी और नहीं भी, तो अनंतानुबंधी के होते हुए सम्यक प्रकृति नहीं है ऐसा कब होगा? अनंतानुबंधी की सत्ता है और सम्यक प्रकृति की नहीं है, अनादि मिथ्या दृष्टि और है वाला में जिसने एक बार प्रथमोक्षम कर लिया है उसके 3 टुकड़े है तो उसके सत्ता में है, इस तरह से ये उद्वेलना के बाद भी एक तो अनादिकाल लेना या उद्वेलना वाला दोनों ने। ऐसे ही अनंतानुबंधी मान माया लोक की अपेक्षा भी लिया था, यानी अनंतानुबंधी के साथ सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व कदाचित है और कदाचित नहीं ऐसा लिया, परंतु यह मिथ्यात्व को नहीं लिया, ऐसा कोई नहीं जीव कि जो अनंत अनुबंधी की सत्ता तो है परंतु मिथ्या तो नहीं है, उदय की अपेक्षा नहीं चल रही, सत्ता की बात चल रही, नहीं तो आप कहेंगे दूसरे गुणस्थान में होता है। हाँ वही चल रहा है, इसीलिए हम मुझे लगा यानी अनंतानुबंधी की सत्ता है वहां मिथ्यात्व की सत्ता होगी ही, परंतु जहां मिथ्यात्व की सत्ता है वहां अनंतानुबंधी की होगी भी या नहीं भी होगी? जहां अनंतानुबंधी की सत्ता है वहां मिथ्यात्व की सत्ता रहेगी ही रहेगी, बराबर है ना? परंतु जहां मिथ्यात्व की सत्ता है वहां अनंतानुबंधी की रह भी सकती है नहीं भी रह सकती। रह सकती है तो हम समझते हैं अनादि से है, और नहीं रह सकती जब विसंयोजना करते। अब जहां अप्रत्याख्यानावरण वाले जो है वो अप्रत्याख्यानावरण क्रोध की विभक्ति वाला, इसके साथ तो मिथ्यात्व को लो लिया, अनंतानुबंधी की जहां जहां सत्ता है वहां मिथ्यात्व होगा ही होगा, परंतु अभी अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क की विभक्ति वाला ले रहे हैं वहां मिथ्यात्व कदाचित है और कदाचित नहीं भी है, ये कैसा लेना? हाँ शायिक होने के बाद अप्रत्याख्यानावरण तो है परंतु मिथ्यात्व तो नहीं है, समय मिथ्यात्व तो नहीं है, समय प्रकृति नहीं है, अनंतानुबंधी नहीं, ऐसे हो सकता। अब नीचे के बारे में वहां तो सात कषायों के बारे में ऐसा लेना हो प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान। अब संज्वलन की बात चल रही है तो जहां संज्वलन की विभक्ति वाला है क्रोध आदि की, तो वहां भी मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व अनंतानुबंधी आदि 12 कषाय और 9 कषायन की विभक्ति वाला कदाचित है और कदाचित नहीं है। कदाचित है वाला जो है अन्य है, क्योंकि जब तक ऊपर चढ़ता है शपक श्रेणी में तब जहां क्रोध है वहां अन्य नहीं है, ऐसा भी हो सकता है? क्षपणा करते करते ऊपर चढ़ गया, अभी क्रोध है, क्रोध का उदय चल रहा है संज्वलन का, तो अन्य प्रकृतियां नहीं, और जब तक क्षय नहीं किया है तब तक अन्य प्रकृतियां है। हमें सभी अनादि का मुख्य दृष्टि ले लो, जब तक क्षपणा नहीं गई तब तक का कोई भी जीव भले श्रेणी में हो कोई भी उपशम श्रेणी में भी हो तो भी ले सकते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। अन्य सभी जीवों की बात है, मुख्यता तो उनकी ही लेना है, मुख्यता तो सारे सभी यानी मिथ्या दृष्टि अनादि का ही लेना है, वो तो ऑप्शनल केस है कि उपशम में भी यानी वो तो कम है ना जीव, मेजोरिटी हमें पहले सोचना है कि जहां संज्वलन है अभी अनादि मिथ्या दृष्टि को संज्वलन है कि नहीं, तो उसके मिथ्यात्व वगैरह होगा अनंत अनुबंधी होगा। अब समय मिथ्यात्व और समय प्रकृति के साथ वाला लेना है तो सादी मिथ्या दृष्टि लेना है, इसमें एक एक प्रकृति अलग अलग सोचना है, ऐसे मान माया वगैरह लेना। अब मान के जब मान की बात करेंगे तो संज्वलन क्रोध भी कदाचित है कदाचित नहीं है, माया की बात करेंगे तो क्रोध मान वगैरह कदाचित है कदाचित नहीं, अकेले लोभ की बात करेंगे तो अन्य तीन है भी और नहीं भी ऐसा। अब हम विशेषार्थ में यही बात बताएंगे। ये तो हमने ओघ की बात चल रही थी हमारी, अब आदेश मैंने गतियों में देखेंगे, अभी जो हमने देखा था ये सामान्य कथन, अब नरक गति में ये है भी है नहीं भी है नहीं होगा, जहां क्षपणा नहीं होती है चौथाई गुण स्थान तक होती है, वहां तक जो पॉसिबल है उतना ही हम कहेंगे। आगे के जो गुण स्थान में जो अभी हमने संज्वलन क्रोध आदि पर गठित किया था, ऐसे तो वहां नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल नरक गति में जहाँ संज्वलन क्रोध है वहाँ अन्य नहीं है, ऐसा तो कह सकते हैं। वो क्षायिक समय दृष्टि है और चौथे गुण स्थान वहाँ कह सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे आदेश की अपेक्षा 133 पृष्ठ पर। देखो चलो हम विशेषार्थ पढ़ लेते हैं, 132 का विशेषार्थ पढ़ेंगे फिर से। मिथ्या तो गुणस्थान में जिसने सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना नहीं की है उसके 28 प्रकृतियों की सत्ता है, तथा सम्यक की उद्वेलना करने पर 27 और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना करने पर 26 प्रकृतियां सत्ता में रहती है। उपशम श्रेणी से उतरे हुए द्वितीयोक्षम सम्यक दृष्टि जीव के चौथे से सातवें तक अनंतानुबंधी चतुष्क के बिना 24 प्रकृतियां सत्ता में है, क्योंकि विषय योजना करके ऊपर चढ़ा है। तथा जिस वेदक सम्यक दृष्टि ने अनंतानुबंधी चतुष्क की विषय योजना कर दी है उसके भी 24 प्रकृतियों की सत्ता है। उसके जरूरी नहीं कि उसको श्रेणी ही चढ़ रहा हो, विषय योजना तो कोई भी जीव कर सकता है, चारों गतियों में भी हो सकती है, चौथे गुणस्थान के भी हो सकते। तथा क्षायिक सम्यक के सम्मुख हुए वेदक सम्यक दृष्टि जीव के अनंतानुबंधी की विषय योजना करने पर 24 की, ये समझ में आया ना। पहले क्षायिक यानी क्षपणा करता है दर्शन मुख की, तो पहले अनंतानुबंधी की विषय योजना करता है तो 24 की सत्ता होती है। मिथ्यात्व की क्षपणा करने पर 23 की, सम्यक मिथ्यात्व की क्षपणा करने पर 22 की, और सम्यक्त्व की क्षपणा करने पर 21 की सत्ता होती है। ऐसा जो 21 की सत्ता वाला जीव जब क्षपक श्रेणी पर चढ़ता है, उपशम श्रेणी पर तो कोई फर्क नहीं है, उसकी तो सत्ता में रहेगी, परंतु अभी 21 के बाद जो आगे वाले सत्ता में से कम हो गए तो क्षपक श्रेणी में हो, तो क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए पुरुषवेदी जीव के, पुरुषवेदी के पहले पहले क्या जाता है, अन्य के भी अप्रत्याख्यान वगैरह जाएंगे, परंतु वेद में जो कोई डिफरेंस है इसलिए पुरुषवेदी को लिया। तो अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान आवरण 8, यह आठों का ही एक साथ हो जाता है। तो 8 का होने पर 21 में से आड़ गए 13 रहे, फिर नपुसक वेद, उसके बाद स्त्री वेद, फिर हास्यादि 6 नौकषाय, पुरुष वेदी के हास्यादि 6 नौकषाय पहले जाते हैं, इसमें डिफरेंस होगा। फिर पुरुष वेदी के पुरुष वेद बाद में जाता है, और नपुंसक वेद और स्त्री वेद वाले जो है, क्योंकि पुरुष वेद का उदय अधिक काल तक है इसलिए उसका बंध भी ज्यादा है, अन्य जो दो वेदी है वो पहले में अपगत वेदी हो जाते हैं, तो नया बंध भी उनका वो हास्यादि नौकषाय के साथ चला जाता है। तो पुरुष वेद यानी भी 4 हो गई सत्ता, फिर संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया और संज्वलन लोभ की क्षपणा करने पर 13, 12, 11, 5, 4, 3, 2 और 1 प्रकृतियों की सत्ता होती है। एक्चुअली लोभ की क्षपणा होने पर 0 हो जाएगी। इतनी विशेषता है कि जो स्त्री वेद के साथ क्षपक श्रेणी चढ़ता है वह पुरुष वेद और 6 नौकषायों का एक साथ क्षय करता है, और जो पुरुष वेद के साथ चढ़ता है वो पहले नौकषायों का और बाद में पुरुष वेद का क्षय करता है, अतः उसके 5 प्राकृतिक स्थान नहीं होता। तो कितने प्राकृतिक होगा, देखो ऊपर देखेंगे, एक देख हम देखते ऊपर से देखो, फिर पहले प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान आठ गए 13 रह गए, फिर नपुसक वेद गया तो 12 रह गए, स्त्री वेद गया तो 11 रह गए, और हास्यादि 6 नौकषाय गए, 6 गए 11 में से तो 6 हो गए ना, तो 5 हो गए। अब इन जीवों के क्या होगा, स्त्री वेदी वाले के पुरुष वेद भी उसके साथ जाएगा, 6 और 7 घटेंगे, तो 11 में से 7 घटे हुए। पांच वाला होगा ही नहीं, यानी इसमें पहले 6 घटाया और बाद में 1 घटाया, उसमें 7 एक 11 में से 6 और 1 7 एक साथ गए तो 4 वाला होगा, उनके लिए 5 वाला स्थान अलग से नहीं होगा। 5 प्रकृति का अर्थ होता है 5 प्रकृति वाला स्थान उनके नहीं होगा, क्योंकि 11 के बाद एकदम 7 प्रकृति आ जाएगी, हास्यादि 6 और एक पुरुष वे एक साथ चली जाएगी, तो उनके 4 वाला स्थान हो जाएगा डायरेक्ट। यही आपको पूछता ना, पूछना था 5 प्रकृतिक स्थान में था। इस प्रकार इन नियमों को ध्यान में रखकर ओघ और आदेश से कहे गए सन्निकर्ष का विचार करना चाहिए। इससे यह जानने में देरी न लगेगी कि किन प्रकृतियों के रहते हुए किन प्रकृतियों की सत्ता है ही वाली बात, और किन की होगी भी और नहीं भी। उदाहरणार्थ लोभ संज्वलन की विभक्ति वाले के शेष 27 प्रकृतियां होगी और नहीं भी होगी, जैसे 10वें गुण स्थान वाला एक शपक, तो अन्य किसी प्रकृतियों की सत्ता ही नहीं है, परंतु नीचे के सभी गुण स्थानों में मान लेते भी कुछ क्षय नहीं किया है, उसको सभी प्रकृतियों की सत्ता है, क्योंकि लोभ संज्वलन का सत्व क्षय, सत्व क्षय का अर्थ होता है सत्ता में से क्षय, सत्व नष्ट हो जाना। एक जो हम द्रव्यानुयोग में कहते उदय का नहीं होना है, हम अभाव कह देते, और यह सत्ता में से जब नष्ट होगा तब सत्व क्षय कहते हैं, सबके अंत में होता है। और भी क्षय शब्द हमने देखा ना, उदयाभावी क्षय, उदय का नहीं होना, उस रूप उदय नहीं आना फिर भी निकल जाना, उसको उदयाभावी क्षय, यह सत्व क्षय। पर मान संज्वलन की विभक्ति वाले के लोभ संज्वलन अवश्य होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि मान है और लोभ नहीं है, क्योंकि पहले मान का क्षय होता है और बाद में लोभ का होता है, क्योंकि मान संज्वलन का सत्व क्षय लोभ संज्वलन के पहले हो जाता है। इसी प्रकार सर्वत्र जानना। अब आदेश निर्देश देख लेते हैं। फिर हमने नरक गति की बात पहले देखी थी, नरक गति में अभी गुणस्थान कौन से है, एक से चार, और वहाँ क्या क्या हो सकता है, तो कोई क्षायिक भी होगा कि नहीं, वहाँ कृतकृत्य भी होगा, विषय योजना वाला भी होगा, इस अपेक्षा से अब यहाँ बातें आएगी। नरक गति में नारकियों में जो जीव मिथ्यात्व की विभक्ति वाला है उसके सब प्रकृतियों का कथन के समान है, यानी मिथ्यात्व की सत्ता है और सम्यक प्रकृति की नहीं है, ऐसा होगा कि नहीं होगा। मैंने पूछा मिथ्यात्व की सत्ता है और सम्यक प्रकृति की नहीं है, हाँ कहाँ हो सकता है, उल्टा बोलो है और सम्यक प्रकृति की नहीं है, अनादि वाले के दोनों नहीं, पर हम पूछ रहे हैं आपके लिए सम्यक प्रकृति की नहीं है, उद्वेल ना करने वाला, सम्यक प्रकृति की उद्वेलना पहले पूरी होती है, इस तरह से सम्यक मिथ्यात्व में भी यही रूल है, उद्वेल ना करने वाला, और अनंतानुबंधी नहीं है ऐसा कब होगा, विषय योजना करने वाला, या नरक में ऐसा हो सकता है कि वो कृतकृत्य वेदक के साथ वहां आया हो, तो उसने नहीं कृतकृत्य के नहीं ले ले, क्योंकि मिथ्यात्व की सत्ता हम ले रहे हैं, सम्यक प्रकृति में कृतकृत्य को लेंगे, या मिथ्यात्व की बात चल रही, तो या तो उद्वेलना की है सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व के लिए, और अनंतानुबंधी के लिए विसंयोजना कर दी, मिथ्यात्व की विभक्ति वाला है वैसा ही कहना। इसी प्रकार सम्यक प्रकृति की अपेक्षा ओघ के समान कथन करना चाहिए। जो जीव सम्यक मिथ्यात्व की विभक्ति वाला है, जिसके सम्यक मिथ्यात्व है, वह मिथ्यात्व बारह कषायन और नौ नौकषायन की विभक्ति वाला नियम से है, परंतु सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी की विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है। यानी जहाँ सम्यक मिथ्यात्व है और सम्यक प्रकृति नहीं है, उद्वेलना करते करते भी सम्यक मिथ्यात्व तो बाकी है परंतु सम्यक प्रकृति की उद्वेलना पूरी हुई है, ऐसा लेना। अनंतानुबंधी में निसंयोजना वाला है। अनंतानुबंधी चतुष्क की अपेक्षा ओघ के समान कथन है। यानी जहाँ अनंतानुबंधी की सत्ता है वहाँ मिथ्यात्व तो की होगी कि नहीं होगी के दोनों ऑप्शन है। अनंतानुबंधी की सत्ता है तो मिथ्यात्व के बारे में क्या होगा, रूल होगी ही। और जहाँ अनंतानुबंधी है और सम्यक मिथ्यात्व है भी और नहीं भी, सिर्फ अनंतानुबंधी की सत्ता है और सम्यक मिथ्यात्व भी है, ऐसा कौन सा जीव होगा? अनंतानुबंधी की है यानी वो मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, सम्यक दृष्टि भी हो सकता है ना? और सम्यक मिथ्यात्व तो की नहीं है, तो अनंतानुबंधी की है और सम्यक मिथ्यात्व तो है, वो सादे मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि होगा। और अनंतानुबंधी की है और सम्यक मिथ्यात्व तो की नहीं है, वो अनादि मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है या उद्वेलना वाला भी हो सकता है। दोनों को हमको सोचना है। अब जो नारकी नीचे से तीसरी लाइन, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध की विभक्ति वाला है, वह मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क की विभक्ति वाला है भी और नहीं भी, ये कौन सा जीव लेना है भी और नहीं भी में? क्षायिक जो होगा उसकी इनकी सत्ता नहीं होगी, और जो क्षायिक नहीं है ऐसे जीवों की इनकी सत्ता होगी, परंतु वह शेष 20 प्रकृतियों की विभक्ति वाला नियम से है। ये 7 छोड़कर जो 21 होती है उसमें से हमने एक को लिया है, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, जिसको अप्रत्याख्यानावरण क्रोध है उसको नियम से अन्य 20 है। ये अन्य 20 कौन कौन सी है? में से एक है, हमने क्रोध की बात कर रहे हैं तो ये 11 और 9 कषाय। अब जैसे हमने क्रोध के बारे में कहा मान को रखो, और उसके बारे में भी 11 कषाय और 9 कषाय, माया लोभ ऐसा अगर हम सबको ले सकते हैं, संज्वलन कर भी वो प्रत्याख्यान पर संज्वलन पर सब पर बता सकते, यानी जैसे हमने अप्रत्याख्यान क्रोध पर घटाया ऐसे ये जो 21 प्रकृतियां हैं उसके एक एक पर घटा सकते। इसी प्रकार पहली पृथ्वी जैसे हमने नरक में घटाया ऐसे पहली पृथ्वी तिर्यंच गति पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त सामान्य देव सौधर्म स्वर्ग से लेकर उप्रिम ग्रेवेक तक के देव औदारिक मिश्र का योगी वैकृत मिश्र का योगी कार्मण का योगी असंयत कृष्ण आदि 3 लेशा वाले और अनाहारक जीवों के कहना चाहिए, यानी उनमें भी ऐसा ही लागू होगा, क्योंकि जहां तक तो क्षायिक समय दृष्टि पाए जाते हैं ऐसे भी यहाँ ले गए। पहली पृथ्वी यानी वो पृथ्वी का एक नहीं लेना, पहले नरक के नार की लेंगे। विशेषा नारकियों में मिथ्यात्व विभक्ति वाले के अनंतानुबंधी चतुष्क सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व ये 6 प्रकृतियां होती भी है और नहीं भी होती है। 20 संयोजक के अनंतानुबंधी चतुष्क नहीं होते, मिथ्यात्व है और जिसने भी संयोजना की है उसके अनंतानुबंधी की सत्ता में, तथा जिसने सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना कर दी है उसके उक्त दो प्रकृतियां नहीं होती। ये सबको एक साथ नहीं लेना चाहिए, ऐसा जीव नहीं लेना है कि जो अनंतानुबंधी भी नहीं है और सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति भी नहीं है। किंतु इसके शेष सभी प्रकृतियों की सत्ता है। अब जो सम्यक प्रकृति की विभक्ति वाला है, सम्यक प्रकृति की है सत्ता, उसके मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क ये छह प्रकृतियां होती है और नहीं भी होती। होती है तो समझ सकते हैं, नहीं होती कृतकृत्य हो जाते, क्योंकि यहाँ कृतकृत्य ही लेना, क्योंकि अभी अन्य मनुष्य में से आया हुआ है, पहले नरक में आता है ना, कृतकृत्य अवस्था में मरण होकर समय को होने से पहले नरकायु बांधी हो तो वह जीव यहाँ आता है। जो कृतकृत्य वेदक समय दृष्टि नरक में उत्पन्न हुआ है उसके उक्त छह का सत्व नहीं होता, तथा जिस वेदक समय दृष्टि ने चार अनंतानुबंधी की विसंयोजना की है उसके उक्त चार का सत्व नहीं होता, शेष के छह का सत्व होता है। एक ख्याल में अनंतानुबंधी कब नहीं होता, तो विसंयोजना का। किंतु इसके शेष का सत्व नियम से होता है। सम्यक मिथ्यात्व की विभक्ति वाले जीव के अनंतानुबंधी चार और सम्यक्व ये पांच प्रकृतियां है भी और नहीं भी है। जिसने अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर दी है उसके अनंतानुबंधी चार नहीं है। सम्यक मिथ्यात्व तो है सत्ता में, परंतु विसंयोजना करने के बाद अनंतानुबंधी नहीं रही। तथा जिसने सम्यक्व की उद्वेलना कर दी है उसके सम्यक्व नहीं है, शेष के ये पांचों प्रकृतियां हैं। यानी सम्यक्व की उद्वेलना, सम्यक प्रकृति की उद्वेलना हो गई है और सम्यक मिथ्यात्व भी है, थोड़े काल में वो भी उद्वेलना होने वाला है, परंतु तब तक हम कहेंगे ना सम्यक प्रकृति बिना वाला है। अनंतानुबंधी चतुष्क की अपेक्षा ओघ कतन से कोई विशेषता नहीं है। यानी जहां अनंतानुबंधी है वहां हन्य है भी या नहीं भी, इसके लिए जो जो हमने पहले देखे थे कि जहां अनंतानुबंधी वहां मिथ्यात्व है भी और नहीं भी, ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं है? अनंतानुबंधी तो है और मिथ्यात्व नहीं है, ऐसा कौन सा जीव होगा? ऐसा होगा ही नहीं। उल्टा तो देख सकते हैं, मिथ्यात्व है और अनंतानुबंधी नहीं है, परंतु जहां अनंतानुबंधी है वहां मिथ्यात्व होगा ही, हमने पहले भी देखा था। परंतु सम्यक प्रकृति के बारे में हो सकता है कि अनंतानुबंधी है, सम्यक प्रकृति है भी और नहीं भी है। जैसे अनादि का है उसकी कहां सम्यक प्रकृति है, ये जिसने उद्वेलना की है उसके सम्यक प्रकृति नहीं है, वैसे सम्यक मिथ्यात्व के बारे में। परंतु अनंतानुबंधी के होते हुए मिथ्यात्व तो नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होगा। उल्टा हो सकता है कि मिथ्यात्व तो है और अनंतानुबंधी नहीं है, विसंयोजना करना। तथा अप्रत्याख्यानावरण क्रोध आदि की विभक्ति वाले जीव के मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक और अनंतानुबंधी चार ये सात प्रकृतियां होती भी है और नहीं भी होती है। नहीं भी होती किसमें लेना? क्षयिक समय दृष्टि का शेष के यथासंभव विकल्प जानना। ऊपर जो प्रथम नरक के नारके आदि अन्य मार्गणाएं गिनाई है वहां भी इसी प्रकार समझना। ये जो हमने ऊपर के पैराग्राफ में फर्स्ट सेकंड लाइन से देखा था ना, पहली पृथ्वी यानी पहला नरक, तिरंच गति पंचेन्द्रिय तिरंच वगैरह वगैरह में यही वहां अप्लाई होता है। अब यहां तक तो हमारा ये पहले हो चुका था, अब यहां से आज का विषय प्रारंभ होता है अपना। दूसरे से लेकर सातवें नरक तक प्रत्येक स्थान के नारकी जीवों में। अब ये क्या विशेषता है पहले नरक से अन्य नरकों में, उसको अलग क्यों लिया? वहां शाही या कृत्य वेदक नहीं पाया जाएगा, इसलिए इनको अलग से बताया। वहां जाने पर सम्यक तो प्राप्त करेगा जी, परंतु यहाँ क्षायिक वाले नहीं पाए जाएंगे। तो दूसरे से लेकर सातवें नरक तक प्रत्येक स्थान के नारकी जीवों में जो मिथ्यात्व की विभक्ति वाला है वह सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क की विभक्ति वाला है भी और नहीं भी, इनको अलग अलग लेना। सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति वाला है भी में वो जिसने वो एक बार सम्यक प्राप्त कर लिया, और नहीं भी में उद्वेल न थी, और मिथ्यात्व की सत्ता वाला है और अनंतानुबंधी की है वो तो रेगुलर मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है और सादी वो तो सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, सादी मिथ्या दृष्टि भी हो, और नहीं भी है में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी नहीं है, ये कब होगा? क्यों नहीं होगा? शाही की कहाँ बात है? मिथ्यात्व तो है, अनंतानुबंधी नहीं है, विसंयोजना वाला है, किंतु शेष प्रकृतियों की विभक्ति वाला नियम से है। अन्य प्रकृतियां तो नियम से होगी, जहाँ मिथ्यात्व है यहाँ वहाँ अन्य प्रकृतियां तो होगी ही। अब हम 135 पर आए। इसी प्रकार 12 कषाय और 9 मुखोषायन की अपेक्षा कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है, यह जीव मिथ्यात्व की विभक्ति वाला नियम से है। मैंने अभी 12 कषाय 9 मुखोषाय के बारे में जो हमने पहले देखा था कि अप्रत्याख्यानावरण जिसके क्रोध है उसके बाकी है क्या नहीं है? मिथ्यात्व में तो मिथ्यात्व के बारे में तो नियम से है, सम्यक मिथ्यात्व होगा भी नहीं भी, सम्यक प्रकृति होगी भी नहीं भी, और अनंतानुबंधी होगी भी और नहीं भी, क्योंकि उन दोनों में तो उद्वेलना पॉसिबल है और इसमें विषय योजना पॉसिबल है, परंतु जिसके अप्रत्याख्यानावरण है उसको मिथ्यात्व तो होगा ही होगा, ऐसे उन का शायद सब नहीं लगा है। जो सम्यक प्रकृति की विभक्ति वाला है, अब सम्यक प्रकृति की विभक्ति है इन्हें एक बार वो सम्यक दर्शन प्राप्त किया हुआ है, भले वो सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि, वह अनंतानुबंधी चतुष्क की विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है भी तो समझ सकते हैं, ये सादी मिथ्या दृष्टि वाला होगा या वेदक सम्य दृष्टि कोई उत्तम सम्य दृष्टि, और नहीं भी है में विसंयोजना कर, किंतु वह शेष प्रकृतियों की विभक्ति वाला नियम से है, जिसके सम्यक प्रकृति है उसके सम्यक मिथ्या तो होगा ही है, क्योंकि दूसरे से सातवें नरक की बात चल रही नहीं है। पहले नरक में हमने क्या देखा था? सम्यक प्रकृति है तो अन्य नहीं भी होगे, क्योंकि कृतकृत्य वेदक अवस्था में आया। अब नीचे तो कोई कृतकृत्य वेदक या क्षपणा का कार्य तो है ही नहीं है, इसलिए यहाँ जहाँ सम्यक प्रकृति है वहाँ सम्यक मिथ्या तो और मिथ्या तो होगी ही होगी, क्योंकि उद्वेलना वाला भी पहले में पहले सम्यक प्रकृति को नष्ट करता है। सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता वाला है तो उसमें हम कहेंगे सम्यक प्रकृति होगी भी या नहीं भी होगी, और उसमें भी कहेंगे मिथ्या तो उसके होगा ही नियम से, क्योंकि यहाँ कोई क्षपणा का कार्य नहीं होता। किंतु वह शेष प्रकृति की विभक्ति वाला नियम से, चौथी लाइन, जो सम्यक मिथ्यात्व की विभक्ति वाला है वह सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी चतुष्क की विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है, यानी उद्वेलना करने वाला नहीं भी है में लेना, और अनंतानुबंधी की विषय योजना करने वाला नहीं भी में लेना, एक साथ दोनों को नहीं लेना, अलग अलग। किंतु शेष प्रकृति उनकी विभक्ति वाला नियम से है। अब जो अनंतानुबंधी क्रोध की विभक्ति वाला है वह सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व की विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है, जो अनादि है उसके तो नहीं भी है, या जिसने उद्वेलना पूरी की है उसके लिए कहेंगे वो नहीं है, अनंत अनुबंधी है और समय मिथ्या समय प्रकृति नहीं है। किंतु वह शेष प्रकृतियों की विभक्ति वाला नियम से है, परंतु वो मिथ्यात्व की विभक्ति वाला नियम से होगा, और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन की विभक्ति वाला नियम से होगा, नौ नौ कषायों की विभक्ति वाला नियम से होगा। अनंतानुबंधी क्रोध के समान अनंतानुबंधी मान आदि तीन कषायों की अपेक्षा भी कथन करना चाहिए। इन्होंने अनंतानुबंधी एक एक को लिया था। इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यंश योनिमति, ये ऊपर तो तिर्यंश लिया, सामान्य तिर्यंश लिया, पंचेन्द्रिय तिर्यंश लिया, और फिर पंचेन्द्रिय तिर्यंश पर्याप्त लिया, और यहाँ योनिमति को लिया, ऐसा क्यों? भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों के कहना यहाँ तो कोई सम्यक्त्व के साथ या अक्षायित के साथ उत्पन्न नहीं हो सकता है, वहां जाने पर सम्यक्त्व प्राप्त हो सकता है, परंतु यहाँ के कृतकृत्य वाले तो कोई यहाँ नहीं आएंगे, इसलिए वहां जो घटित हो सकता था नहीं, दूसरे से सातवें में तो ये भी नहीं घटित होता था, वहां जैसे जैसे घटित किया यही वैसे यहाँ पर घटित। पहले नरक में तो क्षायिक वाला था, तो वैसे ही पोजिशन तिर्यंच तिर्यंच पंचेन्द्रिय सामान्य तिर्यंच में घटित होता था, परंतु यहाँ कौन से तिर्यंचों में? योनिमति वाले तिर्यंच, जो दूसरे से सातवें नरक तक घटित होता है वैसा ही योनिमति तिर्यंचों में घटित। और किस किस को लेना वहां पर? भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष विशेषा। इन उपर्युक्त मार्गणाओं में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना और अनंतानुबंधी चार की विसंयोजना संभव है, अतः ऊपर प्रकृतियों के सत्व और असत्व संबंधी सभी विकल्प, सभी विकल्प यानी सभी ऑप्शंस इसी अपेक्षा से कहे रहे हैं, जो उपर्युक्त प्रकार से घटित कर लेना चाहिए। अब पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्धि अपर्याप्त जीवन, जो मिथ्यात्व की विभक्ति वाला है वह सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व के विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है। देखो समय को प्राप्त करने के बाद अब मिथ्यात्व में यहाँ आया पंचेन्द्रिय लब्धि अपर्याप्त, तो उसके साथ वो समय प्रकृति समय मिथ्यात्व रहेगा सत्ता में, और ऐसा भी जीव है कि वो सत्ता में से नष्ट हो गए भी उद्वेल न हो गए, तो उसके बिना वाला कहेंगे। किंतु शेष प्रकृति उनकी विभक्ति वाला नियम से है, यानी अब यहाँ लब्धि अपर्याप्त हो गए, ऐसा कोई जीव नहीं होगा। मिथ्यात्व की तो सत्ता है परंतु अनंतानुबंधी की नहीं है, हो सकता है कि नहीं? क्यों नहीं होगा? देखो समय दृष्टि को विसंयोजना होती है, हम मान लेते विसंयोजना करके जो मिथ्यात्व में गया और बाद में यहाँ आया तो उसकी सत्ता हो गई ना। अभी यहाँ फिर विसंयोजना करने का कोई सवाल नहीं, समय को प्राप्त करने का सवाल नहीं है। इसी प्रकार परंतु शेष प्रकृतियों की विभक्ति वाला नियम से है, इसी प्रकार 16 कषाय और 9 9 कषाय की अपेक्षा कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसके मिथ्यात्व की विभक्ति नियम से है। जो सम्यक प्रकृति की विभक्ति वाला है वह नियम से सभी प्रकृतियों की विभक्ति वाला, ये पंचेन्द्रिय लब्धि अपर्याप्त है, नियम से मिथ्यात्व अवस्था में है, और सम्यक प्रकृति की सत्ता है, इसका अर्थ वो आदि मिथ्या दृष्टि है, और यह मिथ्यात्व ही है इसलिए उद्वेलना अभी चल ही रही है। तो जिसके सम्यक मिथ्यात्व है, सम्यक प्रकृति है, सम्यक मिथ्यात्व नहीं, पहले सम्यक प्रकृति की बात है, तो जिसके सम्यक प्रकृति की सत्ता है उसके नियम से सम्यक मिथ्यात्व की भी होगी, मिथ्यात्व की भी होगी, अनंतानुबंधी की होगी, सबकी होगी, अन्य सभी की है। जो सम्यक मिथ्यात्व की विभक्ति वाला है वह सम्यक प्रकृति विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है, क्योंकि जिसकी सम्यक प्रकृति की उद्वेलना हो गई है ऐसे जीव के लिए कहेंगे वो नहीं है। और इसकी उद्वेलना नहीं है, हुई नहीं है बिल्कुल, तो हम कहेंगे वो सम्यक प्रकृति की सत्ता वाला है। परंतु जहाँ सम्यक मिथ्यात्व है वहाँ मिथ्यात्व तो उसके होगा ही होगा, क्योंकि हमने लब्धि अपर्याप्त जीव लिया है। किंतु शेष प्रकृतियों की विभक्ति वाला नियम से है। इसी प्रकार लब्धि अपर्याप्त मनुष्य सभी एकेंद्रिय, सभी विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त, सभी प्रकार के पांचों स्थावर का ऐसे जीव लिए हैं कि सम्यक्त्व के साथ यहाँ नहीं जाते। और यहाँ तो नियम से मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है। पांचों स्थावर का है, त्रस लब्धि अपर्याप्त, मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी, विभंग ज्ञानी, मिथ्या दृष्टि और असंगी जीवों के कहना चाहिए। विशेषण इन उपर्युक्त मार्गणाओं में सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना संभव है। ये उद्वेलना की अपेक्षा यहाँ विकल्प होते हैं। अतः ऊपर जितने विकल्प कहे हैं वे इस अपेक्षा से घटित कर लेना चाहिए। अब स्वर्गों की बात करते देव को। अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि विमान तक प्रत्येक स्थान में जो जो मिथ्यात्व की विभक्ति वाला है वह अनंतानुबंधी चतुष्क की विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है। है भी तो समझ सकते हैं और नहीं भी में विसंयोजना वाला लेना। किंतु शेष प्रकृतियों की विभक्ति वाला नियम से है। इसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व की अपेक्षा से कथन करना चाहिए। जो सम्यक प्रकृति की विभक्ति वाला है वह मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क की विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है, क्योंकि वो कृतकृत्य भी हो सकता है तो नहीं भी है मेरे। किंतु शेष प्रकृतियों की विभक्ति वाला नियम से है, क्योंकि बाकी प्रकृतियों का क्षपणा का कार्य यहाँ नहीं हो सकता देवगति में, इसलिए बाकी सबकी सत्ता होगी। जो अनंतानुबंधी क्रोध की विभक्ति वाला है वह नियम से सब प्रकृतियों की विभक्ति वाला है। अनंतानुबंधी क्रोध के समान अनंतानुबंधी मान आदि तीन कषायों की अपेक्षा कथन करना चाहिए। जो अप्रत्याख्यानावरण क्रोध की विभक्ति वाला है वह सम्मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क की विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है। एक अप्रत्याख्यान वाला लिया, है भी और नहीं भी में, है भी तो समझ सकते हैं और नहीं भी में क्षायिक वाला लिया। किंतु शेष प्रकृतियों की विभक्ति वाला नियम से है। इसी प्रकार 11 कषाय और 9 कषायों की अपेक्षा कथन करना चाहिए। यानी जो अप्रत्याख्यान आवरण क्रोध के बारे में देखा तो ये क्रोध सहित जो 21 प्रकृतियां हैं तो बची कितनी, 20 बची ना, तो उसको एक एक को लेकर भी ऐसा ही घटित करेंगे। विशेषण 9 अनुदिश से लेकर ऊपर सभी जीव सम्यक दृष्टि ही होते हैं। ऊपर अनुदिश से लेकर लिया था ना, अतः यहाँ 28, 24, 22 और 21 ये चार विभक्ति स्थान संभव है। 28 वाला कौन होगा? वहाँ जाने वाला जीव कौन होगा?
हाँ,
द्वितीय ऑप्शन वाले को तो यहाँ 24 की होगी, 28 की बात चल रही है। इसीलिए मैंने पूछा है, वहाँ जाकर कोई समय को नहीं प्राप्त करेगा क्योंकि वहाँ समय दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं। कौन से होते हैं समय दृष्टि? कोई क्षायिक होगी, कोई वेदक होगी, कोई द्वितीय ऑप्शन होगी। द्वितीय क्षायिक वाले की तो 28 की नहीं होगी सत्ता, वो 21 वाला होगा। और वेदक में लेना तो वेदक समय दृष्टि उसकी 28 की सत्ता है। वेदक यानी शोषण समय दृष्टि। 24 वाला कौन होगा? जिसने अनंतानुबंधी की विषय योजना कर। 22 वाला दूसरी भाषा में कृतकृत्य वेद, ऐसा कोई होगा अकेले मिथ्यात्व की सत्ता नहीं है और बाकी दो की है? मैंने अनंतानंद की विसर्जना की 24 की हो गए और फिर मिथ्यात्व की क्षपणा कर दी 23 का हो गया, ऐसा कोई जीव होगा क्या? क्यों नहीं होगा? नहीं, यहाँ करके जाएगा ना, वो बीच में मरण नहीं होता। यानी 22 की सत्ता हो गई और वहां मरण होगा ऐसा कभी नहीं होगा। 23 की, 23 वाले की, परंतु 22 की हो गई और कृतकृत्य वेदक हो गया तब उस अवस्था में मरकर जा सकता है, उसको यहाँ लिया है। यानी मनुष्य में उसने 22 की सत्ता कर दी है, यानी कृतकृत्य वेदक हुआ है और ऐसा जो मरकर वहां जाएगा और वहां उसका जो कृतकृत्य वेदक का काल पूरा होते ही 21 की सत्ता वाला हो जाएगा। देखो 28 वाला तो समझ सकते हैं, वो कोई भी वेदक चौषण समदृष्टि। 24 वाला अनंतानुबंधी की भी संयोजना वहां जाके करेगा या यहां से गया होगा 24 की सत्ता लेकर। 22 वाला कृतकृत्य वेदक यहां से ही 22 होकर वहां जन्मा है और 21 वाला शाही वहां जाएगा या वहां जाके शाही पूरा करेगा। 22 में से 21 का होगा, वो भी 21 का हो सकता है। यानी यहाँ से 22 के साथ गया था और वहां जाके 21 का हो गया। 22 की सत्ता वाला की नहीं, यानी वहां पहले अंतर्मुहूर्त में वो 21 के हो जाता, ऐसा भी ले सकते हैं या कोई 21 के साथ ही यहाँ से गया। ये चार विकल्प ही हो सकते हैं उसमें, 28 की, 24 की, 22 की और 21 की। इसी अपेक्षा से ऊपर के सभी विकल्प घटित कर लेना चाहिए। वहां कोई उद्वेलना वाला होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? हाँ, देखो वहां सभी समय दृष्टि ही होते हैं, समय के साथ ही उत्पन्न होते हैं और वहां कोई गिरता ही नहीं, वहां एकमात्र चौथा गुणस्थान है। विशेषार्थ बताया नीचे की लाइन, वैक्रिय का योगियों में, अभी योग की बात चल रही है, जो मिथ्यात्व की विभक्ति वाला है वह सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क की विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है, किंतु शेष प्रकृतियों की विभक्ति वाला नियम से है। वैक्रिय का योगी यानी अभी देवनारकी की बात, जो सम्यक मिथ्यात्व की विभक्ति वाला है वह सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी चतुष्क की विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है। सम्यक प्रकृति के बारे में उद्वेलना वाला लेना और अनंतानुबंधी के बारे में भी संयोजना वाला लेना, किंतु शेष प्रकृतियों की विभक्ति वाला नियम से है। जो सम्यक प्रकृति की विभक्ति वाला है वह अनंतानुबंधी चतुष्क की विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है, किंतु शेष प्रकृतियों की विभक्ति वाला नियम से है। यानी सम्यक प्रकृति की विभक्ति है और अनंतानुबंधी की नहीं है, विषय योजना जिसने की। जो अनंतानुबंधी क्रोध की विभक्ति वाला है वह सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व की विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है। यानी अनंतानुबंधी है और सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति नहीं है, ये कब होगा? उद्वेलना वाला, किंतु शेष प्रकृतियों की विभक्ति वाला नियम से है। अनंतानुबंधी क्रोध के समान अनंतानुबंधी मान आदि तीन कषायों की अपेक्षा कथन करना चाहिए। जो अप्रत्याख्यानावरण क्रोध की विभक्ति वाला है वह मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क की विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है। अप्रत्यक्ष है, नवर्ण अधिक्रोत है और बाकी सब है भी और नहीं भी। यानी यहाँ भी वैकृत संयोग लेना है, दुखशाही हम शाही की अपेक्षा नहीं है कहीं, और अन्य है। किंतु शेष प्रकृतियों की विभक्ति वाला नियम से है अप्रत्यक्ष अनावरण क्रोध की अपेक्षा। जिस प्रकार सन्निकर्ष के विकल्प कहे हैं, उसी प्रकार 11 कषाय और 9 नौकषायन की अपेक्षा सन्निकर्ष के विकल्पों का कथन करना चाहिए। जहाँ एक की सत्ता है वहाँ दूसरी कौन सी सत्ता है भी और नहीं भी है, होगी तो उसको हम कहेंगे सन्निकर्ष, उसके साथ उसकी भी सत्ता है। विशेषकर वैकृत कायोग में मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों प्रकार के जीव होते हैं, किंतु कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि नहीं होते। अभी मैं भानुबेन आपसे पूछती हूँ, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्या कृतकृत्य वेदक वैकृत के साथ उत्पन्न नहीं होते? मरकर वहां जाएंगे कि नहीं? कृतकृत्य देव में नरक में जाते हैं, क्यों नहीं जाते? जाते हैं ऐसा मैं नियम बता रही हूँ। पूरा नहीं करते, वहां जाके पूरा करते हैं। तो यहाँ क्यों नहीं लिया? नहीं, इनको सोचने दो, इन नए लोगों को सोचने दो। देव में जाएंगे तो पहले में पहले कौन सा काय योग होगा? वैकृत मिश्र काय योग कब तक होगा? शरीर पर्याप्ति पूरी होने तक। तो उसके पहले पहले वो कृतकृत्य वेदक का काल पूरा हो जाता है। यानी वैकृत मिश्र काल बड़ा है और कृतकृत्य वेदक काल छोटा है। इसलिए देखो, यहाँ से कृतकृत्य में वेदक अवस्था में मरकर देव में आ गया, तो कृतकृत्य वेदक में से एक एक निषेक खिर कर वो क्षायिक समय दृष्टि हुआ और उसके बाद उसके शरीर पर्याप्ति पूरी। यानी जब क्षायिक हो चुका तब उसके कौन सा योग चल रहा था? वैकृत मिश्र का योग चल रहा। इसलिए हम वैकृत का योग में उसको नहीं गिना, वैकृत का योग में कृतकृत्य वेदक को नहीं लिया। वैकृत मिश्र में लेंगे हम उसको, ख्याल है? यहाँ क्या लिखा देखो, वैकृत का योग में मिथ्या दृष्टि और समय दृष्टि दोनों प्रकार के जीव होते हैं, किंतु कृतकृत्य वेदक समय दृष्टि नहीं होते। क्योंकि जो कृतकृत्य वेदक समय दृष्टि मनुष्य मरकर देव या नारकियों में उत्पन्न होते हैं, उनके अपर्याप्त अवस्था में ही सम्यक्त्व प्रकृति का क्षय होकर क्षायिक समय दर्शन हो जाता है। ये कौन सी अपर्याप्त अवस्था है, इसको कौन सी अपर्याप्त है? अपन उसको उस अपर्याप्त नाम का, उसका नाम क्या है? ये जो देव है निवृत्ति अपर्याप्त, और जो अन्य जो अपर्याप्त होते हैं उनको हम लब्धि अपर्याप्त रखें, और ये निवृत्ति अपर्याप्त। अतः वैकृत का योग वाले जीव 28 तो समझ सकते हैं हम, कि जो अन्य जो समय दृष्टि है। 27 वाला कैसा होगा? कौन सी एक प्रकृति नष्ट होगी? मिथ्या तो जला जाएगा पहले, क्या होगा? उद्वेल ना करने वाला, पहले समय प्रकृति उल्टी हो गई ना, अभी समय मिथ्या तो रह गया, मिथ्या तो रह गया, बाकी सब रह गया, तो 27 हो गया। 26 में दोनों की उद्वेलना हुई या जो अनाधिकार है। 24 वाला 28 में से 4 कम करना बाकी रखना, 26 में से 2 कम होकर 24 के नहीं होते, अनंत आनंदी से। और 21 प्रकृति वाला कौन है? जो क्षायिक समय दृष्टि है ऑलरेडी और वहां जन्मा है, वहां कोई नहीं करता 24 में से 21। अतः इसी अपेक्षा से ऊपर के सभी विकल्प घटित कर लेना चाहिए। अब आहारक का योगियों की बात चल रही है और आहार मिश्र का योगी जीवों में जो मिथ्यात्व की विभक्ति वाला है वह अनंतानुबंधी चतुष्क की विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है, क्योंकि वहां कोई विषय योजना वाला भी होगा, अनंतानुबंधी की विषय योजना कर चुके और आहारक वाला है अभी, किंतु शेष प्रकृतियों की विभक्ति वाला नियम से है। इसी प्रकार सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व की अपेक्षा कथन करना चाहिए। जो अनंतानुबंधी क्रोध की विभक्ति वाला है वह नियम से सभी प्रकृतियों की विभक्ति वाला है। किसमें ले रहे हम? आहारक का योग में ले रहे हैं, आहारक का योग में ले रहे हैं। तो अनंतानुबंधी क्रोध के समान अनंतानुबंधी मान आदि तीन कषायों की अपेक्षा भी कथन करना चाहिए। जो अप्रत्याख्यानावरण क्रोध की विभक्ति वाला है वह मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क की विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है। क्या कहते हैं? अप्रत्याख्यानावरण वाला है और बाकी का नहीं है, ये कौन सा जीव होगा? आहार का योग वाला जीव, शायिक समय। किंतु शेष प्रकृतियों की विभक्ति वाला नियम से है। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध के समान शेष 11 कषाय और 9 कषायों की अपेक्षा कथन करना चाहिए। विशेषा आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग, ये दोनों योग प्रमत्त संयत के होते हैं, पर ऐसा योग क्षायिक समय दर्शन का प्रस्थापक नहीं होता, यानी वो आहारक मुखी काल में उसका क्षायिक समय दर्शन का प्रस्थापक नहीं है, शुरू करने वाला नहीं, प्रारंभ करने वाला नहीं। अतः इसके 28, 24 और 21 ये तीन विभक्ति स्थान होते हैं, यानी 24 में से 23 और 22 वाला स्थान इसके नहीं होगा। सामान्य अन्य जीवों के तो होंगे, अन्य मुनिराजों के 23 का भी होगा, मिथ्यात्व का क्षय कर दिया 23 का होगा, सम्यक मिथ्यात्व का कर दिया 22 का होगा, फिर 21 का होगा। आहारक वाले के वो प्रस्थापक नहीं होते, शुरू हो सकता है। यहाँ क्या लिखा देखो, हाँ, ऐसा जीव यानी आहारक और आहारक मिश्र का योगी प्रस्थापक नहीं होता, तो अन्य प्रस्थापक हो सकते हैं। ये छठे गुणस्थान के बारे में आता है, अभी भी छिंदवाड़ा में बहुत लोगों को आश्चर्य लगा, अरे छठे में कैसा क्षायिक का प्रारंभ होता है। अतः इसके 28, 24 और 21 ये तीन विभक्ति स्थान होते, इसी अपेक्षा से ऊपर के सभी विकल्प घटित कर लेना चाहिए। अब वेद मार्गणा की बात करें, कौन से वेद वाला जीव है उसकी बात करें। वेद मार्गणा के अनुवाद से स्त्री वेदियों में मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व और 12 कषायों की अपेक्षा कथन ओग के समान है। जो क्रोध संज्वलन की विभक्ति वाला है वह मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी क्रोध आदि 12 कषाय और नपुसक वेद की विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है। क्रोध संज्वलन यानी क्रोध संज्वलन की विभक्ति जिसके है स्त्री वेद में, इसका अर्थ क्या है? स्त्री वेद के उदय सहित श्रेणी चढ़ रहा है और संज्वलन क्रोध की विभक्ति है उसके भी। पहले वेद का अभाव होगा, फिर संज्वलन क्रोध का होगा, तो क्रोध का है वहां, अन्य का नहीं है ऐसा भी हो सकते। तो अन्य में किसको लिया? देखो क्रोध की विभक्ति वाला है वह मिथ्या तो सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्या तो अनंतानुबंधी आदि 12 ले ली, संज्वलन को छोड़कर सभी ले ली, और नपुंसक वेद की विभक्ति वाला है भी और नहीं भी, क्योंकि स्त्री वेद ही हमारा क्राइटेरिया है, तो स्त्री वेद है और संज्वलन क्रोध भी है। तो नीचे के जो नहीं है मैं नपुंसक वेद तक के जो है वो नहीं है, नहीं भी और है भी, ऐसा दोनों ले सकते। तो नहीं भी है मैं कौन लेना, जो क्षायिक सम्यक दृष्टि है स्त्री वेद वाला क्षपक श्रेणी चल रहा है, तो उसके तो मिथ्यात्वादी वो सात तो नहीं है, और पहले में पहले नपुंसक वेद की क्षपणा की, ऐसा नहीं लेना। तो उसने तो अन्य के बीच पहले अनंतानुबंधी गए और प्रत्याख्यानार्थी 8 गए, और उसके बाद अभी नपुंसक वेद की क्षपणा की। अब स्त्री वेद है, संज्वलन 4 है उसके, और फिर पुरुष वेद भी होगा, हास्यादि 6 भी होंगे, तो होते ही है ऐसे कौन से उसको अभी हम देखें। नहीं भी होते में उसके नीचे क्षपणा वाले सब ले, और जो होते ही है ऐसे भी लिस्ट हम देखेंगे। देखो आगे, किंतु वह शेष 3 संज्वलन कषाय, क्रोध वाला लिया है ना हमने, शेष 3 संज्वलन कषाय और 8-9 कषाय की विभक्ति वाला नियम से है। 8 क्यों लिए 9 कषाय? हाँ, नपुंसक वेद निकल गया। इसी प्रकार 3 संज्वलन और 8-9 कषाय की अपेक्षा खत्म करना चाहिए। जो नपुंसक वेद की विभक्ति वाला है वह मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व और 12 कषायों की विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है, जैसे हमने पहले देखा था स्त्री वेद के बारे में। किंतु वह 4 संज्वलन और 8-9 कषायों की विभक्ति वाला नियम से है। नपुंसक वेदी जीवों के स्त्री वेदी जीवों के समान कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि स्त्री वेदी जीव के नपुंसक वेद की अपेक्षा सन्निकर्ष का जैसा पतन किया है, उसी प्रकार नपुंसक वेदी जीव के स्त्री वेद की अपेक्षा सन्निकर्ष का कथन करना चाहिए। अब पुरुष वेदियों में जो विशेषता है उसको कहेंगे। नपुंसक वेद वाले के दोनों इकट्ठा जाते हैं, परंतु स्त्री वेद वाले के पहले नपुंसक वेद चला जाता है। पुरुष वेदी जीव में तीसरी लय, मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व अनंतानुबंधी क्रोध आदि 12 कषाय और 9-9 कषाय की अपेक्षा कथन ओघ के समान है। यानी पुरुष वेदी है तो उससे हास्यादि 6 कषाय तक सभी पहले चले जाते हैं, यानी अन्य दो वेद भी जो चले गए, पुरुष वेद तो अभी है और बाकी सब चले गए, ऐसा हो सकता है। 4 संज्वलन कषायों का भी कथन ओघ के समान है, किंतु इतनी विशेषता है कि उसमें पुरुष वेद और 4 संज्वलन कषायों की विभक्ति नियम से है। यानी जो पुरुष वेदी जीव है और क्रोध है या मान है ऐसा जब कहेंगे तो वो चारों है, और पुरुष वेद तो है ही है, क्योंकि बाद में हम उसको अपगत वेदी कहेंगे, अब हम उसको पुरुष वेदी कह रहे हैं। तो अन्य कषायों का उसने नाश करते करते अभी 4 संज्वलन और 1 पुरुष वेद बाकी है। अपगत वेदी जीवों में जो मिथ्यात्व की विभक्ति वाला है वह अनंतानुबंधी चतुष्क को छोड़कर शेष 23 प्रकृतियों की विभक्ति वाला नियम से है। क्या कहना चाहते हैं? अपगत वेदी और जिसके मिथ्यात्व की विभक्ति है ऐसा कौन सा जीव होगा? सूक्ष्म श्रेणी वाला। तो मिथ्यात्व तो है परंतु अनंतानुबंधी नहीं है, क्यों? विसंयोजना करके श्रेणी चढ़ा है। तो हमने 23 की विभक्ति वाला नियम से नियम डाला। इसी प्रकार सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व की अपेक्षा कथन करना चाहिए। अपगत वेदी और सम्यक मिथ्यात्व तो उसके अन्य भी हो गए, अनंतानुबंधी के अलावा अन्य हो गए सब। जो अप्रत्यक्ष अनावरण क्रोध की विभक्ति वाला है, अपगत वेदी और अप्रत्यक्ष का क्रोध की विभक्ति वाला, वह मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व की विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है, ये कौन सा जीव लिया? उपशम श्रेणी वाला, द्वितीय उपशम वाला, क्षय वाला नहीं लेना है भी में, तो वो द्वितीय उपशम वाला है, और नहीं भी है में नहीं भी में उपशम श्रेणी वाला भी लेना, पर शायद समय दृष्टि या क्षपक श्रेणी वाला, जब तक उसने अप्रत्याख्यान की क्षपना नहीं की है तब तक का नहीं समझे, जो क्षायिक समय दृष्टि है जिसके मिथ्यात् समय प्रकृति समय मिथ्यात् सब क्षय हो चुका, तो वो अपगत वेदी हुआ है उपशम श्रेणी में, तो उसके तो अप्रत्याख्यान होगी सभी सत्ता में है, तो ऐसे जीव के अप्रत्याख्यान है परंतु अन्य नहीं है, और यही बात क्षपक श्रेणी में भी, जब तक अप्रत्याख्यान आवरण की क्षपना नहीं करता तब तक वहां भी ये बात लागू होगी। अप्रत्याख्यान के वाला इसके है भी और नहीं भी, किंतु अप्रत्याख्यान आवरण मान आदि 11 कषायें और 9 कषायों की विभक्ति वाला नियम से है। अप्रत्याख्यान आवरण क्रोध के समान अप्रत्याख्यान आवरण मान आदि 7 कषायों की अपेक्षा भी कथन करना चाहिए, क्योंकि वो 8 कक्षा एक साथ होता है, अप्रत्याख्यान आवरण प्रत्याख्यान आवरण क्रोध मान माया लोक कक्षा एक साथ होता है। जो क्रोध संज्वलन की विभक्ति वाला है वह मान आदि 3 संज्वलनों की विभक्ति वाला नियम से अपगत वेदियों में बात चल रही है, अपगत वेदी होने के बाद क्रोध मान माया लोक जो है उसकी बात चल रही है, किंतु वह शेष प्रकृतियों की विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है। उपशम श्रेणी में तो वो नहीं भी है और क्षपक में क्षपक में नहीं भी है और उपशम में है भी। जो मान संज्वलन की विभक्ति वाला है वह माया आदि 2 संज्वलन की विभक्ति वाला नियम से है, किंतु शेष प्रकृतियों की विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है। जो माया संज्वलन की विभक्ति वाला है वह लोभ संज्वलन की विभक्ति वाला नियम से है, किंतु शेष प्रकृतियों की विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है। जो लोभ संज्वलन की विभक्ति वाला है वह 23 प्रकृतियों की विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है। 23 क्यों लिया, 24 क्यों नहीं लिया, हाँ किसको छोड़ा, ये कौन सा जीव है? 23 की विभक्ति वाला है वो, तो 23 कैसे हो गए उसके, हाँ उपशम श्रेणी वाला 24 की सत्ता वाला जीव लेना, तो उसके अन्य 23 बाकी है, और क्षपक में जो क्षपक है जहाँ अकेला संज्वलन लोग है, 23 की क्यों बात की, क्योंकि वो सर 23 के है भी और नहीं भी है मिले, है भी कहाँ होगा, संज्वलन लोग है वहाँ 23 है, तो नीचे का कहीं भी लेना, अकेले श्रेणी में ही चाहिए ऐसी बात नहीं है, यानी जिसके अनंत अनुबंध की विसर्जना की है, 24 की सत्ता वाला जीव उन जीवों में संज्वलन क्रोध की है, संज्वलन लोग की बात हो रही है, अपगत वेदियों में उसको लेना, हाँ तो श्रेणी में लेना पड़ेगा, तो श्रेणी में गया है अपगत वेदी है और 24 की सत्ता वाला है, तो उसके अन्य 23 की बात करेंगे। देखो 10वें गुणस्थान में है, वहाँ लोग है, तो उपशम श्रेणी वाला 10वें गुणस्थान में सत्ता कितनी पड़ी है, अन्य लोग के अलावा अन्य 23 है वहाँ पर, क्योंकि लोग को छोड़कर कई अन्य कई थे हम सन्निकर्ष में ऐसा ही सीखते हैं, जहाँ लोग की सत्ता है वहाँ बाकी की है कि नहीं है, जहाँ 24 है वहाँ अर्क्षपक में क्या कहेंगे अपगत वेदी हुआ है, और जहाँ लोग की सत्ता है वहाँ अन्य 23 की नहीं, ऐसा हो सकता है ना? 9वें के अंत में और 10वें में नहीं समझे वहाँ है ही नहीं, है ही नहीं कुछ, कुछ नहीं है लोग के अलावा कुछ नहीं है। जो लोक संजुलन की विभक्ति वाला है वह 23 प्रकृतियों की विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है। जो स्त्री वेदी की विभक्ति वाला है वह मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व 8 कषाय और नपुसक वेद की विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है। क्या कहना चाहते हैं? अपगत वेदियों में स्त्री वेदी की विभक्ति वाला यानी क्या? अपगत वेदी में लिए कि नहीं लिए? स्त्री वेद की विभक्ति वाला लिया अपगत वेद होते ही क्या स्त्री वेद के उसको क्षय हो जाते क्या? नहीं, उदय मिटते ही उसका क्षय होता है क्या? नहीं सत्ता में पड़ा है वो लेना चाहिए, क्षपक वाला लेना ही नहीं है। नहीं मैम, मगर वहां भी नपुंसक वेद की विभक्ति वाला है भी और नहीं भी लिया। देखो देखो फिर पढ़ो। जो स्त्री वेदी की विभक्ति वाला है वह मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व 8 कषाय और नपुंसक वेद की विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है, किंतु शेष प्रकृतियों की विभक्ति वाला नियम से है। नहीं भी में शपक लेना, क्योंकि 8 कषाय नपुंसक वेद की विभक्ति वाला है भी और नहीं भी वाला है, तो शपक वाला नहीं भी है मैं लेना, और जो उपशम श्रेणी वाला है वो है भी मैं लेना, शेष प्रकृतियों की विभक्ति वाला नियम से। इसी प्रकार नपुंसक वेद की अपेक्षा कथन करना चाहिए। अब जो पुरुष वेद की विभक्ति वाला है वो मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व अप्रत्याख्यानावरण क्रोधादि 8 कषाय और 9 कषायों की विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है, है भी और नहीं भी में लेना उसको, है भी में अनंतानुबंधी का सवाल ही नहीं है, है भी में उपशम वाला लेना, उपशम श्रेणी वाला, और नहीं भी में ये क्षपक वाला लेना, किंतु 4 संज्वलन की विभक्ति वाला नियम से है, क्योंकि जहाँ पुरुष वेद है पुरुष वेद के परमाणु है अभी सत्ता में वहां संज्वलन 4 के है ही। यहाँ जो वेदी की बात पहले भी स्त्री वेदी पुरुष वेदी नपुंसक वेदी की बात थी और अभी अपगत वेदियों में भी फिर दोबारा कह रहे हैं, उसका अर्थ होता है अपगत वेद होने पर जो वहां परमाणु है सत्ता में उसकी बात। जो पुरुष वेद की विभक्ति वाला ही पढ़ा ना हमने 4 की नियम से हाँ। अब हास्य की बात करें, ऊपर से छठीला जो हास्य की विभक्ति वाला है वह मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व अप्रत्याख्यानावरण क्रोध आदि आठ दशाएं और स्त्री तथा नपुसक वेद की विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है, क्योंकि जहाँ हास्य का क्षय होता है उसके पहले ये दो तो वेद चले जाते हैं और बाकी हास्य है यानी पुरुष वेद भी वहां सत्ता में है, इसलिए नपुसक वेद और स्त्री वेदियों के वो दो की जो सत्ता चली जाती है, परंतु पुरुष वेद और हास्य आदि छो उनके वहां वो एक साथ चले जाएंगे। किंतु चार संज्वलन पुरुष वेद और रति आदि पांच नौ कषायों की विभक्ति वाला नियम से है, यानी एक अलग लिया ना हास्य अलग लिया तो हास्य को छोड़कर छह वहां पर जहां हास्य है वहां अन्य पांच भी है, अभी सत्ता की बात चल रही है और जब क्षय होगा छह का एक साथ होगा और इन छह के साथ पुरुष वेद का भी होगा, परंतु पुरुष वेदियों के लिए पुरुष वेद का क्षय होने के लिए टाइम लगेगा क्योंकि नया बंध वहां हो रहा है पुरुष वेद का। ये अन्य पांच की बात थी ना। इसी प्रकार रति की अपेक्षा तथा अरति शोक भय और जुगुप्सा की अपेक्षा कथन करना चाहिए। हास्यादि जो छ है उसमें से एक एक के लिए यही नियम लागू होगा क्योंकि छ का एक साथ क्षय हो जाता है। अब कषाय मार्गणा के अनुवाद से आप बंदे की बात करें कि उदय की बात करें, क्योंकि शोक और आरती का बंद कहाँ तक है छठे तक है और हास्य रति भय जुगुप्सा का आठवें के सातवें भाग तक नहीं, ये चार है। देखो आठवें के पहले भाग में निद्रा प्रचला बंद विच्छित होती है, छठे भाग में बीच वाले वो तीस है और सातवें भाग में चार है। ये बंदे विच्छित बहुत टाइम हुआ ना इसलिए यहाँ तो जो उदय रूप है उदय कहाँ तक है आठवें तक, आठवें के अंत समय तक उदय है। अब उदय में नहीं है फिर भी नौवे गुणस्थान में पड़े हैं, उसके बाद क्या होता है नौवे गुणस्थान में वेद का उदय चल रहा है। सत्ता में से नष्ट हो पुरुष वेद में नव समय प्रबुद्ध रहेगा और बाकी अन्य जीवों में तो हास्य आदि छे और पुरुष वेद वो एक साथ चलेगा। कषाय मार्गणा की बात करेंगे। कषाय मार्गणा के अनुवाद से क्रोध कषायी जीवों के पुरुष वेदी जीवों के समान कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि क्रोध कषायी जीव पुरुष वेद की विभक्ति वाला है भी और नहीं भी, यानी जो अंत में जो नष्ट होता है यानी पुरुष वेद का क्षय हो जाने पर क्रोध जहां है तो क्रोध कषाय इतना ही हमें लेना है, तो संज्वलन है तो भी क्रोध कषाय है कहेंगे, तो जहां क्रोध है तो वो चार के अलावा बाकी सब क्षय हो चुका है ऐसा भी हो सकता है, और नहीं भी है वो कोई मिथ्या दृष्टि लेंगे तो उसमें तो सभी पड़े हैं। इसी प्रकार मान कषाय जीवों के कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मान कषाय जीव क्रोध कषाय की विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है, जहां मान की क्षपणा बाद में होते पहले क्रोध की क्षपणा हो जाती है, तो जहां क्षपणा नहीं हुई तो है भी कहेंगे और क्षपणा हो गई तो नहीं भी कहेंगे। इसी प्रकार माया कषाय जीवों के समझना चाहिए। इतनी विशेषता है कि माया कषाय जीव मान कषाय की विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है, इसी प्रकार लोभ कषाय जीवों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि लोभ कषाय जीव माया विषय की विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है। कषायी जीवों ने ये ऊपर कुछ निकाल दिया है, पीछे जो उन्होंने करेक्शन दिए ना, शुद्धि पत्र कहाँ है, पहले बाद में एक सौ चालीस की बात कहाँ लिखी, 140 वहाँ शुद्धि पत्रक में राइट साइड में एवं लोभ वगैरह वगैरह यह पाठ नहीं चाहिए। प्राकृत में भी नहीं चाहिए लिखा उन्होंने, और हिंदी में भी उन्होंने निकाल दिया। ये क्यों निकाला, मगर वो नहीं, वो तो बराबर लग रहा है, वहां उन्होंने करेक्शन जोड़ी है। इसी प्रकार लोग का चाहिए नहीं चाहिए एवं लोग बनवरी माए सिया भी सिया अभी, एक्चुअली बराबर है उनके जो चल रहा है उनका जो प्रकरण। हाँ मूल इसमें नहीं होगा, परंतु उन्होंने ब्रैकेट में तो डाला है। अकषायी जीवों में आगे पढ़ते हैं, अभी अकषायी लिए, अकषायी तो दोनों जगह हो सकते हैं, उपशम में भी और अकषायी जीवों में जो मिथ्यात्व की विभक्ति वाला है। अकषायी में विभक्ति वाला यानी कौन सा होना चाहिए, उपशम श्रेणी वाला, ग्यारहवीं की बात, ग्यारहवीं वाला ही होगा। वह नियम से अनंतानुबंधी के सिवा सब प्रकृतियों की विभक्ति वाला है, क्योंकि अनंतानुबंधी की तो विषय विज्ञान है। इसी प्रकार सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व की अपेक्षा जानना चाहिए। अब यहाँ जो अकषायी में अप्रत्याख्यानावरण क्रोध की विभक्ति वाला है, वह मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व की विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है। अप्रत्याख्यानावरण जिसके है उसको मिथ्यात्व दी, वो है भी और नहीं भी है, किंतु हाँ अनंतानुबंधी को क्यों छोड़ो, हाई भी में वो अनंतानुबंधी नहीं हो सकते, इसलिए इनको ही लिया, क्योंकि हाई भी में देखो किसको लेना है, अकषायी जीव में अप्रत्याख्यानावरण क्रोध की विभक्ति यानी सत्ता वाला जीव, श्रेणी में तो अनंतानुबंधी का सवाल ही नहीं, इसलिए उसको लिया ही नहीं। इसके अलावा कौन है, मिथ्या तो समय प्रकृति और समय मिथ्यात्व, उसके विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है भी तो समझ सकते हैं, नहीं भी है श्राइक वाला जो है वो नहीं भी है, किंतु वह अप्रत्याख्यानावरण मान आदि ग्यारह कषाय और नौ कषाय की विभक्ति वाला नियम से, जहाँ अप्रत्याख्यानावरण क्रोध की क्षपना नहीं हुई है, वहां वे आठ और वो संजरण चार बारह और नौ कषाय सब हो गए। समझ में आता है, क्षपक श्रेणी में अप्रत्याख्यानावरण क्रोध का क्षय करता है, उसके पहले क्या पोजीशन है, बस वो क्षायिक समय दृष्टि। तो यहाँ तो अपना सवाल मिथ्या तो समय प्रकृति और समय मिथ्या तो की बात है, अनंत अनुबंधी के तो हमने पहले से ही नहीं लिया है, क्योंकि वो होता ही नहीं वहां, न उपशम श्रेणी में होता है न क्षपक श्रेणी में, इसलिए इनकी बात। तो जहाँ अप्रत्याख्यानावरण क्रोध है वहां अन्य हो गए भी और नहीं भी हो गए, ऐसा ग्यारह गुण संघ की बात चल रही है, परंतु वहां हो गए ने सत्ता की बात चल रही है, सत्ता की बात चल रही है ग्यारहवें गुण स्थान में, वो प्रत्याख्यानावरण की सत्ता है, तो मिथ्या तो वगैरह इनकी सत्ता है भी और नहीं भी है, मैं किसको लेना, शाही को लेना। किंतु वो प्रत्याख्यान और मान आदि ग्यारह कषाय नौनु कषाय की विभक्ति वाला नियम से है। शपक श्रेणी में भी हम ले सकते हैं, अन्य की तो नहीं है परंतु बाकी तो नियम से है ही उसके। उक्षम श्रेणी में भी है, जहाँ एक ही है वहाँ बाकी सभी है ही उसके। नहीं है कब कहेंगे हम, जो नीचे क्षपणा होती है तो ऊपर के लिए हम कहेंगे ये है भी और नहीं भी। जैसे आठ कषाय एक साथ जाते हैं तो संज्वलन क्रोध के बारे में कथन आएगा, परंतु वो अकषाय होता है तो चला ही जाता है, तो अकषाय जीवों में ये निकल जाते हैं। तो है भी और नहीं भी जब कहेंगे हम, क्योंकि क्या है फिर से दोबारा क्षपक श्रेणी में भी अकषाय होने के लिए कहाँ तक जाना पड़ेगा, बारहवें तक, तो वहां किसी की भी सत्ता नहीं होगी। तो जहाँ एक की सत्ता है कहेंगे तो ग्यारहवें में ही कहना पड़ेगा। तो एक की सत्ता है और दूसरे की नहीं है, वो तो शायिक समय दृष्टि की अपेक्षा जो प्रकृतियां हैं उनके ही बारे में घटित होगा, अन्य के बारे में नहीं। तो शायिक समय दृष्टि भी है तो अप्रत्याख्यान वर्णादि बारह और नौ उसके है, इक्कीस की सत्ता वाला है और वो चढ़ता है, चौबीस की सत्ता वाला चढ़ेगा, या तो चौबीस की सत्ता वाला चढ़ेगा या इक्कीस की वाला चढ़ेगा। तो अकषाई हुआ है ना, ग्यारहवें गुणस्थान में गया है, और जो चौबीस की सत्ता वाला है तो उसके लिए हम कहेंगे ये यहाँ ये है तो मिथ्या, तो समय मिथ्या, तो समय प्रकृति है। और जो इक्कीस की सत्ता सहित चढ़ा है उसको कहेंगे वो तीन नहीं है। परंतु प्रत्याख्यान मान वगैरह तो सबके उसके हो गए ही हो गए, जहाँ क्रोध है वहाँ मान माया वो सब है। यानी वो अप्रत्याख्यान मान आदि ग्यारह कषाय और नौ कषाय, यानी वो ग्यारह और पहला हमने गठित किया था क्रोध पर, यानी इन इक्कीस के बारे में तो यही रूल होगा। अकषाय जीवों के समान यथाख्यात संयतों के भी जानना चाहिए। ये दोनों को अलग अलग क्यों कहा? कषाय मार्गणा में जब हम अकषाय कहते हैं और जब हम संयम मार्गणा में उनको यथाख्यात संयमी कहें, यथाख्यात संयम कहें, बात तो वही के वही होगी, परंतु मार्गणा का नाम बदलने से उनका नाम क्या होगा भी? यथाख्यात संयति। मति ज्ञानी श्रुत ज्ञानी अवधिक हो, अपना समय हो चुका पार, यहाँ से आगे जावा।